نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. आप सब एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ें मिलके اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. आज हम इंशाल्लाह ताला जो मेरी बुक है उसके मुताबिक पेज नंबर 202 से पढ़ेंगे. अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी, हिजरत, मदीना और मदीना में क़याम के बाद जो मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डील किए, मीसाक किए, और उसके बाद हमने काफी तफसील से ग़ज़वा बदर को पढ़ा था. ग़ज़वा बदर को पढ़ने के बाद हमने ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के दरमियान के हालात को देखा, और अभी तक हम जो बातें पढ़ चुके हैं उनमें ग़ज़वा बनू सुलैम के साथ मुसलमानों का जो मामला हुआ. ग़ज़वा बनू सुलैम में एक कबीला था जिसने मुसलमानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो आते तो मुसलमान वहां तक पहुंच गए और मुसलमानों को बहुत सारा माल गनीमत मिला. मुख्तसरन ये बात है. उसके बाद मैंने आपके साथ बहुत तफसील के साथ उमैर बिन वहब, जहमी और सुफियान बिन उमैया ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की थी वो आपको बहुत तफसील से मैंने बताई थी. उसके बाद हमने तफसीलन देखा था ग़ज़वा बनू कैनका, एक यहूदी कबीला था, उसके साथ क्या मामला किया गया, और ग़ज़वा सुरैक ये हमने पढ़ा था. तो ये कुछ मामला थे जो हमने देखे. लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाए मैं थोड़ा सा एक और बात भी आपको बता देना चाहती हूँ, और वो ये कि हजरत उमर बिन खत्ताब बयान फरमाते हैं कि उनकी बेटी हफ्सा जो है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके शोहर फौत हो गए, यानी बदर की लड़ाई में वो भी शरीक हुए थे और मदीना में फौत हुए आके. तो वो कहते हैं कि बेटी जाहिर है अब बेवा हो गई थी, तो अब कहते हैं मेरी मुलाकात हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से हुई, तो मैंने उनसे हजरत हफ्सा का जिक्र किया कि वो चाहे तो मैं हजरत हफ्सा का निकाह उनसे कर दूं. तो हजरत उस्मान कहने लगे कि मुझे सोचने का मौका दें. कहते मैं चंद दिनों तक इंतजार करता रहा, फिर उन्होंने कहा मेरी राय यही बनी है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा. आपको पता है ना कि हजरत उस्मान की भी बीवी फौत हो गई थी, किस वक्त, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापस आए थे. उसके बाद कहते हैं मेरी मुलाकात अबू बकर से हुई, उनसे भी मैंने यही कहा कि अगर वो चाहें तो मैं हफ्सा का निकाह उनसे कर देता हूँ. जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए और मुझे कोई जवाब नहीं दिया. इनके इस तर्ज अमल ने जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी बढ़कर मुझे रंजीदा कर दिया. मैं खामोश हो गया. फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत हफ्सा का रिश्ता मांग लिया. चुनाचे मैंने हफ्सा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया. तो ये भी बीच में आपको पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां हो रही थी. तो इसके अंदर देखिए सीरत पढ़ना तो आपके लिए इस तरह से बड़ा आसान है कि आप कोई सीरत की बुक ले लें और उसमें से चैप्टर वाइज आप पढ़ते रहें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन असल बात यह है कि जब हम सीरत पढ़ रहे हों तो उसको अपनी जिंदगी के साथ हमने कैसे रिलेट करना, वो है असल बात, कि हमारे लिए क्या सबक निकलता है. क्योंकि इस तरह से देखते जाना उनकी ये शादी हुई या ये जंग में हिस्सा लिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, इससे मुझे क्या रहनुमाई मिलती है. हम इस क्लास में इस तरह से चलते हैं कि हम ये देखें कि हमारे लिए जिंदगी में हर फेज में कैसे सीरत रहनुमाई करती है, कैसे गाइड करती है, और इसमें इस वाक्य में हमें क्या पता चलता है. ये जो वाक्य मैंने आपके सामने रखा है हजरत हफ्सा के निकाह का, क्या पता चला जी, के जो है ना लड़की वाले भी निकाह का पैगाम दे सकते हैं, और इसके अंदर इस्लाम में कोई आर नहीं है. जो हमने आर समझा ना कि हम क्यों, हम बहुत सारी चीजों को काबिल आर बना लेते हैं, यानी शर्म की बात बना लेते हैं जो कि हमारे दीन में नहीं है, और जिन चीजों में शर्म करनी चाहिए उनमें हम शर्म करते नहीं. ठीक है ना, तो हमने भी अपने स्टैंडर्ड बना लिए ना, जबकि दीन में देखिए हजरत उमर उनसे कह रहे हैं, और अगर उन्होंने इनकार कर भी दिया तो इसमें कोई दुश्मनी की बात नहीं है। लोगों के यहाँ यहाँ पे आज क्या होता है कि अगर मंगनी टूट गई तो उसके बाद सारी जिंदगी तक के लिए दुश्मनी होंगे, हसद पैदा हो गए और उसके बाद एक दूसरे के साथ कता ताल्लुक हो गया। अगर रिश्तेदारों में हुई है तो कभी जिंदगी में बात नहीं करनी। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी बात नहीं, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो कोई बात नहीं, इनको रंज हुआ, लेकिन फिर क्या उसके बाद क्या हजरत उमर की अगर उस्मान के साथ नहीं बनी या हजरत उमर की अब अगर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नहीं बनी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग इन चीजों को ऐसा नहीं ले लेते थे कि शादियां ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज हो, जैसे हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गई शादी के, तो शादी के ऊपर ही सारे ताल्लुकात बेस करते हैं। और कहते हैं कि इसके बाद अब सिद्दीक मुझसे मिले और कहने लगे, जब आप मुझसे मिले थे और हजरत हफ्सा के निकाह की बात की थी और मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, तो मेरे इस तर्ज अमल से आपको तकलीफ तो हुई होगी। मैंने कहा यकीनन। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, असल बात ये थी कि अल्लाह के रसूल ने मेरे सामने हफ्सा से निकाह करने का तज़किरा किया था। अब मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल का राज जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए खामोश हो गया। हाँ अलबत्ता अगर अल्लाह के रसूल निकाह ना कर लेते तो मैं जरूर कर लेता। क्या? तो देखिए आप इससे भी हमें पता चलता है कि जो राज है किसी का वो आगे बयान करना ये भी एक गुनाह होता है। मैंने आपसे बात की और आपको कहा कि ये एक राज है और ये एक बात है जो मैं आपसे कर रही हूँ और आप आगे जाके किसी और से कर दें और कहें बताना ना वो उसने मुझे ये बात कही है, फिर वो आगे से आगे जाके कहे बताना ना मुझसे उसने ये बात की, तो वो राज राज नहीं रह गया बल्कि सिर्फ उस बंदे के लिए वो राज होता है कि ये पता नहीं मेरी बात किसी और को नहीं पता, जबकि हर एक को पता होती है, पूरा शहर जान लेता है। तो इसलिए राजों की हिफाजत का बहुत ज्यादा हुक्म है हमारे दीन में, राज की हिफाजत की जाए। कोई आपसे कोई बात शेयर करता तो उसको आगे ना पहुंचाया जाए, क्योंकि बाज लोग पेट के हल्के होते हैं, तजस्सुस भी करते हैं और आगे से आगे बात भी फैलाते रहते हैं। अच्छा एक और बात हमने पहले देखी, जब बदर पे मुसलमान आए और मैंने आपको बताया था कि उसके बाद ही उन्होंने फर्स्ट ईद की थी, रमजान में बदर हुई और उसके बाद फिर फर्स्ट ईद जो मुसलमानों की थी फर्स्ट शव्वाल को, और वो उन्होंने मनाई। लेकिन आपने देखा मैंने आपको पूरी इस टाइम में ये नहीं बताया कि मुसलमानों ने कोई आके नाच गाना किया हो, उसकी मजलिसें की हो, ढोल धमाके हुए हो, कोई खेल तमाशे हुए हो इस बात पे कि हमें फतह मिल गई। हालांकि बदर की फतह इतनी बड़ी फतह थी, अभी आप देखेंगे कि कितना बड़ा इफेक्ट हुआ इसका, और हम पहले भी देख चुके हैं कि उन्होंने कोई नोहा करने की इजाजत नहीं दी थी। इसी तरह बहुत चाहते थे कि फिदिया लेने के लिए भी बहुत जल्दबाजी ना करें लोग फिदिया लेके जाने के लिए, ताकि मुसलमान कहीं इस बात से खुश ना हो कि पता नहीं हमने इनको कितनी बड़ी तकलीफ पहुंचा दी, कितना रंज दे दिया। तो इसलिए इतनी बड़ी एक फतह थी मुसलमानों के लिए और इतनी बड़ा शिकस्त और इतनी बड़ी रुसवाई थी काफिरों के लिए, और इस वजह से आप ये देखें कि यहाँ पे भी आप देखते हैं कि कोई मुसलमानों की तरफ से ऐसा एक्शन नहीं हुआ, कोई ऐसा अमल नहीं हुआ जिससे कि दुश्मन को टीज करना या इतना तकबर या फखर और इस तरह की बातें हुई हो, जैसे कि हमारे यहाँ होती है कि एक मैच भी जीत जाते हैं तो हमारी क्या आलम होता है, और एक शादी या कोई फतह मिल जाए तो फिर क्या आलम होता है कि हम बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। जबकि वो लोग ईद के मौके पर भी, ईद भी थी और फतह भी हुई, तो दोनों मौके मिल गए, तो उस मौके पर भी उनका तर्ज अमल क्या था कि वो फिर तकबीरें पढ़ते हुए, तहमीद और अल्लाह की तकदीर बयान करते हुए मैदानों में निकल आए ईद की नमाज पढ़ने के लिए। फिर दूसरी एक और बात जो हमने पहले पढ़ी थी कि काफिरों में से एक समझदार आदमी था और उसने उनको क्या समझाया था कि देखो ये तुम्हारा रिश्तेदार है, अगर इसकी फतह होती है तो इसमें भी तुम्हारे लिए ही फखर की बात है, तुम्हारी इसके अंदर बड़ाई है कि तुम्हारा ही रिश्तेदार है ना, तुम्हारे ही कबीले का, अगर अगर शिकस्त खा जाता है तो काफिर जो अरब हैं वो खुद ही इससे बदला ले लेंगे, फिर तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। उसकी बात में बहुत बड़ा एक पॉइंट था हमारे लिए कि देखिए कहीं तो काफिर में बात है, लेकिन हमारे लिए क्या पॉइंट है कि अक्सर खानदानों के अंदर हसद पैदा हो जाता है, फलानी का बेटा इतना आगे निकल गया, फलानी की बेटी का यहाँ रिश्ता हो गया, फलाने का ये हो गया, हालांकि अगर वो ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर भी आपके लिए ही बड़ाई की बात है, आपके लिए ही अच्छी बात है कि वो आपके खानदान का है, तो आपके लिए उसके अंदर बजाय हसद करने के इससे खुश होना चाहिए कि हमारे खानदान का बच्चा आगे गया। अगर इंसान इस तरह से सोचे तो हसद नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर खानदानों के अंदर सबसे ज्यादा हसद होता है, बाहर के लोग नहीं इस तरह से हसद करते जितने आपस के अंदर खानदान वाले हसद में मुब्तला हो जाते हैं। तो एक ये पॉइंट हमें पता चला। इसके अलावा और क्या हुआ था, हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से भी हुई थी इस दौरान। हजरत बुरैदा बिन हसीफ फरमाते हैं कि अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा के रिश्ते की बात की, दोनों ने रिश्ता मांगा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा सगीरतुन, यानी अभी वो छोटी हैं। और जब हजरत अली ने रिश्ता मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। और हजरत अस्मा बिनते उमैद फरमाती हैं कि मैं हजरत फातिमा की शादी में गई, जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटखटाया, उम्मे ऐमन ने दरवाजा खोला। उम्मे ऐमन कौन थी, उम्मे ऐमन कौन थी जो लेकर आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब आपकी वालदा की वफात हो गई थी रब्बा के मकाम पे, तो उस वक्त वो लेकर आई थी, लौंडी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन को कहा मेरे भाई को बुलाओ, यानी हजरत अली को। और उम्मे ऐमन अल्लाह के ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल अली तो आपके भाई हैं और आप अपनी बेटी का रिश्ता भी इनको दे रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, यानी मेरे सके भाई तो नहीं है, इसका मतलब है कि कजन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात थे लेकिन उनके साथ भी रिश्ता हो सकता है, ये महरम रिश्ते नहीं है, इसीलिए रिश्ता हो सकता है। अस्मा बिनते उमैद फरमाती है वहाँ मौजूद औरतों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी तो एक तरफ हो गई, तो मैंने भी एक कोने में जगह ली। जब हजरत अली आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और उन पर पानी छिड़का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत के फातिमा को बुलाओ। शर्मो हया का पैकर फातिमा आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तेरा निकाह अपने अहले बैत में महबूब तरीन आदमी से कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के लिए दुआ की और उन पर पानी का छिड़काव किया। ये मैंने पहले भी बताया कि एक और लेक्चर जो निकाह के ऊपर था कि ये सुन्नत भी आज खत्म हो चुकी है, बल्कि बहुत से लोगों का इसका इल्म भी नहीं है। सुन्नत पे अमल करना तो दूर की बात है कि इस तरह से शौहर यानी दूल्हा और दुल्हन के ऊपर इस तरह से पानी के छींटे मारे जाए, बल्कि किसी ने तो ये कहा कि अगर लोगों ने देख लिया कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, इस तरह छींटे मार के अभी से क्या शुरू कर दिया। तो यानी इस कदर ज्यादा हम ना वाकिफ है सुन्नतों से और हर चीज हम कर रहे हैं, आतिशबाजी से लेकर मेहंदियों से लेकर माइयों और उसकी सारी रस्में हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी दुआ दी बरकत की दोनों को और उनके ऊपर पानी छिड़का। इस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत, उनके निकाह के वक्त उनको रिश्वत करने से पहले। और बाज जगह पे आता है कि जब उनको रुख्सत कर दिया था तो उनके घर गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनपे ये पानी का छिड़काव किया था। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फातिमा को तैयार करके रवाना किया तो एक चादर अता फरमाई, पानी की मश्क दी और चमड़े का एक तकिया दिया जिसमें घास भरी हुई थी। अब बाज लोग ये कहते हैं कि ये जहेज था, ये जहेज नहीं था, हजरत अली ने ही पैसे दिए थे कि घर के सामान के लिए आप ये इनमें से इसको यूज कर लें और घर का सामान कुछ लें, तो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें खरीदी थी। तोहफतन किसी को दिया जा सकता है, लेकिन हम जो लंबे चौड़े जहेजों की वो करते हैं या डिमांड की जाती ऐसा कुछ भी इस्लाम में नहीं है। और ये इतनी आसान इतनी सादा शादी थी, और ठीक है आपके पास माल हो आप अच्छे तरीके से और ज्यादा कर लें, लेकिन जो हमने इसराफ की इंतहा कर दी है वो तो शादी में किसी तरह जायज नहीं। याद रखे एक एक पाई का हिसाब होना अल्लाह के यहाँ, एक एक पाई का, और जब एक एक पाई का हिसाब देने लगेंगे तो हम एक शादी पे ही स्टक हो गए तो क्या होगा, एक शादी के अखराजात का ही हम जवाब देने लगे तो शायद पार ना हो सके। और तो जो इतने इसराफ हैं वो तो दूर की बात। तो ये दो वाकयात आप लोग लिख लें कि इस तरह से ये वाकयात भी हुए। अच्छा, उसके बाद एक बहुत अहम वाकया हुआ था जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसने ओहद तक पहुंचने में, और वो था सरिया कुर्दा, और ये सरिया जैद बिन हारिसा भी कहलाता है। चलें काब बिन अशरफ का वाकया हम देखते हैं। काब बिन अशरफ का वाकया इसलिए बहुत अहम वाकया है, इसके ऊपर बहुत लैदह होती है, बहुत बातें होती हैं कि क्यों काब बिन अशरफ को कत्ल किया गया था और क्यों ऐसे कत्ल किया गया, और गैर मुस्लिम और बाद दफा अपने मुसलमान लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के बातें बनाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी। लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्यों ये कत्ल किया गया। एक तो इसकी बैकग्राउंड सुन लें, कि ये एक यहूदी औरत का बेटा था और इसका बाप जो था वो मुशरिक था, किसी और कबीले में उसने कत्ल कर दिया था अपने कबीले में और वहां से भाग के आया था और बनू नजीर में इसने आके पनाह ली थी। फिर बनू नजीर वालों ने मुख्तसरन इसकी हिस्ट्री है इस काब बिन अशरफ के बाप की, ये बनू नजीर ने फिर इसको समझ लें कि अपना बेटा बना लिया था और अपना बेटा बना के फिर इतना ही नहीं सिर्फ बल्कि अपनी एक बेटी अपनी एक यानी कबीले की बच्ची की शादी इसके साथ कर ली थी। और ये इंतहाई खूबसूरत नौजवान था, इसके हुसन की चर्चे थे हर तरफ और ये एक बहुत बड़ा शायर भी था, पोएट था। और इसका हाल ये था कि ये मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों की औरतों के ऊपर खास तौर से ऐसी बुरी शायरी करता था और ताने बहुत ही शर्मनाक बातें हैं कई के जो इसने अपनी शायरी में कही कि मुसलमान औरतों के साथ ऐसे और वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो इस तरह की शायरी में बातें करता ही था, लेकिन जहाँ पे मुसलमान औरतों की बात आ जाती थी वहाँ पे बहुत ही गैरत का मामला आ जाता था। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था और मुसलमानों का और इस्लाम का और लोगों को भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काने में इसका बहुत बड़ा रोल था। बहुत मालदार था, हत्ता के इसका अपना किला था, यानी उसमें आप इसमें पढ़ेंगे गड़ियां, यानी बहुत बड़े बड़े किले होते थे जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते थे उनका अपना किला अलग से होता था। तो हसीन भी था, मालदार भी था, बहुत बड़ा नाम भी था और शायरी चूंकि करता था तो समझ लें ऐसे ही जैसे कि मीडिया इसके हाथ में था। आज सोच लें कि कोई मालिक हो किसी CNN का या उसका, तो उसकी कितना वोकल होगा, उसकी कहां तक आवाज पहुंचेगी। इसी तरह ये आदमी बहुत जबरदस्त शायरी करता था और मुशरिकीन को इस पे भी भड़काता था कि वो इंतकाम लेना मुसलमानों से, इस पे भी भड़काता था। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए आम मुसलमानों को ये उनमें पूछा कि कौन है जो काब बिन अशरफ से निपटेगा, क्योंकि इसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी। याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जात के लिए खुद बदला नहीं लिया था, अपनी जात के लिए पर्सनली अपने लिए कभी बदला नहीं लिया था कि मुझे किसी ने तकलीफ दी है तो मैं उसके लिए अनलेस के कोई इसने इस्लाम या मुसलमानों के साथ या अल्लाह की शरीयत के अंदर कोई ऐसा किया हो तो उसको उसकी सजा तो मिलनी है। वो उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के लिए नहीं करते थे। इसके जवाब में मोहम्मद बिन मुस्लिमा और अबाद बिन बिशर ये जो काब के रजाई भाई थे, हारिस बिन औस और अबू अब्द, उन्होंने अपनी खिदमात पेश की। अब ये एक छोटे से समझ लें ग्रुप था जिन्होंने कहा कि हम इसको खत्म करेंगे और ये इसके कमांडर मोहम्मद बिन मुस्लिमा थे। अब यहाँ से हम बुक से अब थोड़ा सा देख लेते हैं। काब बिन अशरफ का कत्ल, ये शख्स बड़ा मालदार और शायर यहूदी था। यहूदी क्यों था जबकि इसका बाप मुशरिक था, माँ यहूदी थी और आपको पता है यहूद में नस्ल किससे चलती है, माँ से। इसे मुसलमानों से सख्त अदावत थी, चुनाची ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की हज किया करता था, यानी ऐसे शेर पढ़ता था जिसमें उनको बेइज्जती के, रुसवाई के और उनकी औरतों के मुतल्लिक गजलिया अशआर कहता था, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही शेमफुल किस्म की शायरी करता था, जबकि उनके दुश्मनों की मदाह करता था, उनकी तारीफें करता था और इन्हें जंग के लिए भड़काता था। हत्ता कि यह बदर के बाद कुरैश के पास जा पहुंचा और इन्हें मुसलमानों से जंग करने पर उकसाया और इसके बारे में बहुत से अशआर कहे। इसकी एक सीक्रेट मीटिंग का पता चलता है जो इसने अबू सुफियान के साथ जाके की थी और उस मीटिंग के अंदर क्या था ये नहीं पता चलता, मगर ये पता चलता है कि उसके बाद इसने और ज्यादा इसमें तेजी दिखाई। हो सकता है उनको बुला रहा था कि आप आओ और हमला करो या जो भी, तो अबू सुफियान के साथ इसकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसके साथ कुछ तहत मुआयदा इसने किया था। ये भी कहा कि तुम लोग मुसलमानों से ज्यादा हिदायत की राह पर। अबू सुफियान ने फिर इससे सवाल पूछा था, अच्छा ये बताओ तुम तो यहूदी हो, अहले किताब हो, तुम ये बताओ हम ज्यादा हिदायत पर हैं या ये मुसलमान। तो इसने आगे से जवाब दिया था कि तुम लोग ज्यादा हिदायत पर, हालांकि ये लोग जानते थे कि ये शिर्क करने वाले लोग हैं और ये हिदायत पर नहीं। और उसने बनु कैनका पर जो कुछ गुजर चुकी थी इससे भी इबरत हासिल ना की। आप लोगों ने वाकया सुना है ना बनु कैनका का। बिल आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ से निपटे? जवाब में मोहम्मद बिन मुस्लिमा, इबाद बिन बिशर, अबू नायला, हारिस बिन औस और अबू अब्द बिन जबर रजी अल्लाह अन्हुम ने अपनी खिदमत पेश की। मोहम्मद बिन मुस्लिमा इनके अमीर करार पाए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहने की इजाजत ली। अच्छा, क्या कहने की इजाजत ली? मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इजाजत दें अगर मैं कोई ऐसी बात आपके मुतल्लिक उसके पास जाके बोलूं तो मुझे इजाजत है? यानी आप देखेंगे अभी आगे जो वो बात करता है उसे को पता चलेगा कि क्या बात उसने की थी, यानी झूठ बोलने की। समझ लें कि मैं गलत बयानी कोई करता हूँ तो मुझे इसकी इजाजत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। इसके बाद वो काब के पास आए और कहा, उस शख्स ने यानी किसकी तरफ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, इहास हमसे सदका मांगा है और हकीकत यह है कि इसने हमें मुशक्कत में डाल दिया। अब वो क्या, मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने क्या किया? काब बिन अशरफ जो यहूदी है उसके पास गए और जाके उससे कहा कि उस आदमी ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसने तो हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया, हमसे सदका मांग रहे हैं। और ये काब बिन अशरफ जो था, जैसे आज भी यहूदियों का बैंक पे इनका कब्जा होता है, इसी तरह उस जमाने में भी, देखें इतने पुराने जमाने में ये कर्ज दिया करते थे सूद पे और उससे बहुत माल कमाते थे। तो उसने कहा कि इसने तो हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया, प्रिटेंड किया कि हम मैं तो उनके साथ नहीं हूँ। काब की बात छिंकल के वो तो बड़ा खुश हुआ कि अच्छा ये भी तो इसका मतलब मेरी तरफ के ही है। बोला, वल्लाही अभी तुम लोग और भी घुटा जाओगे, यानी अभी तो ये शुरुआत है, तुम देखना ये तुम्हें आगे आगे तुमसे क्या करवाएगा। फिर मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने बतौर कर्ज गेहूं या खजूर मांगी और तय किया कि रहन में हथियार देंगे। यानी उसने कहा कि आप मेरे पास तो देने के लिए उनके सदका मांग रहे हैं, कुछ नहीं है, तुम ही हमारी कुछ हेल्प करो। तो उसने कहा कि अच्छा मैं हेल्प में देता हूँ तुम्हें गेहूं और खजूर, लेकिन रहन रखा जाता था। आपको पता है रहन क्या होता है? कि जब कर्ज लेते हैं तो कोई चीज एज ए बॉन्ड या जिसको हम कहते हैं वो रखी जाती है ना। तो उसने कहा कि रहन रखने के लिए कुछ दो। तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने पूछा कि आप कौन सी चीज पसंद करेंगे, कि क्या चीज रहन रखी जाए, क्या रखाऊं मैं रहन, मेरे पास तो इतना कुछ है नहीं। उसने कहा अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। तो अब आप इससे उसकी ज़हनियत भी समझ सकते हैं। तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा जैसे ना इस वक्त बहुत हिकमत से काम ले रहे थे, इसलिए कि उनका मोटिव कुछ और था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम कैसे, देखिए बात को किस तरह से मोल्ड किया। उन्होंने कहा कि अच्छा हम कैसे अपनी औरतों को तुम्हारे पास रखें, तुम इतने हसीन नौजवान हो, मुझे तो डर है कि कोई औरत तुम्हारे ऊपर ही ना रह जाए। तो अब वो उससे और ही फूल गया। उसने कहा अच्छा तो फिर अपने बेटों को मेरे पास रहन रख दो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा हम अपने बेटों को कैसे रहन रखें, अगर ऐसा हो गया तो सारी जिंदगी के लिए इनके लिए गाली हो जाएगी, तुम्हारे बाप ने इतने से गेहूं और इसके लिए बेटों को रहन रख दिया, तो ये तो हमारे लिए बड़ी आर की बात है। अलबत्ता हम आपके पास हथियार रहन रख सकते हैं, ये हमारे पास वेपन्स हैं वो हम रख सकते हैं। और हथियार उस वक्त बहुत कीमती चीज थी, इसलिए कि अरब लोग ये खुद ये हथियार बनाना नहीं जानते थे, इम्पोर्टेड होते थे और जैसे जीरा वगैरह ये इम्पोर्ट की जाती थी। तो आगे को हमें खतरा भी है तो हमें तो हथियार चाहिए होंगे। अब तुम्हारे पास रहन रखे होंगे तो हम जल्दी से जल्दी तुम्हारा कर्ज अदा करेंगे ताकि हम अपने हथियार छुड़ा सके, क्योंकि हथियार बहुत जरूरी चीज थी वहाँ पे, एक एसेंशियल थे। उसने कहा हाँ ठीक है। अब ये उनकी बहुत एक स्ट्रेटेजी थी, ये बात तय पा गई और मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा कि ठीक है आपके पास हम हथियार ले आएंगे। उधर जो उनके साथी थे, जो पूरा ग्रुप था ना, अबू नायला, उन्होंने भी आके फिर काब बिन अशरफ से कहा कि भाई इस तरह से मेरे दोस्त को आपने इस तरह से दिए हैं कर्ज पे और हथियार इसकी जगह रहन रखने को कहा है, तो मेरे साथ भी आप इसी तरह कर लें, मैं भी अपने हथियार रख देता हूँ। उसने कहा कि ठीक है। इसी तरह एक दो और लोगों ने भी इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से बताया कि वो तो इनकी वजह से तो सारा अरब हमारा दुश्मन हो गया और आप बस हमें थोड़ा सा कर्जा दे दें और हमारे हथियार रहन रखें और हमारी तो जानों पे आ चुका है ये। लेकिन ये सब कुछ क्या था, सिर्फ उसकी उस वक्त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके इन्होंने ये बात करी थी। अच्छा, अब मोहम्मद बिन मुस्लिमा और अबू नायला, अब उन्होंने ये बात तय कर ली इसके साथ और उन्होंने ये तय किया कि फलां दिन फलां वक्त में हम हथियार ले आएंगे आपके पास रखने के लिए। अब ये हम यहाँ से पढ़ते हैं। फिर मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने बतौर कर्ज गेहूं या खजूर मांगी और तय किया कि रहन में हथियार देंगे। इसके बाद अबू नायला आए और उन्होंने भी मोहम्मद बिन मुस्लिमा से मिलती जुलती बात की और ये कहा कि मेरे कुछ रुफका हैं जिनके ख्यालात भी मेरे ही जैसे हैं, मैं उन्हें भी आपके पास लाना चाहता हूँ, आप इनके हाथ भी कुछ बेचें और इन पर एहसान करें। काब ने ये बात मंजूर कर ली। इसके बाद 14 रबीउल अव्वल और 3 हिजरी है। अब ये ना थोड़ी सी आप टाइम लाइन को याद रखिएगा, 2 हिजरी के अंदर रमजान में बदर हुई है, ठीक है, और उसके बाद ही फौरन बनू कैनका का वो किस्सा हुआ था। और फिर ये अब किस वक्त की बात है, रबीउल अव्वल है यानी अभी साल शुरू हुआ है, 3 हिजरी है। इसमें चांदनी रात में ये लोग हथियार लेकर काब बिन अशरफ के पास आए। अब काब बिन अशरफ का जो किला था और सिक्योरिटी थी वो बहुत हाई होती थी, तो उसकी सिक्योरिटी चूंकि बहुत हाई होती थी, लेकिन इस वक्त उसने अपनी सिक्योरिटी को ये कह दिया कि ये हथियार लेकर आना है तो रहन रखने के लिए, अदरवाइज आम बंदे को तो कोई आने नहीं देगा, इतने सारे हथियार लेके कौन आने देगा कि आप जाओ उसके करीब। और उस वक्त में कहा जाता है कि चांदनी रात में ये लोग हथियार लेकर काब बिन अशरफ के पास आए और इसे पुकारा कि नीचे उतरे, क्योंकि वो किले के अंदर था और अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी बीवी ने कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, मैं ऐसी आवाज सुन रही हूँ जिससे गोया खून टपक रहा है। अब वो जो दुल्हन थी वो उसके साथ था और जब उन्होंने नीचे से आवाज दी तो उसने कहा कि आप ना जाइए, मुझे तो यहाँ पे खून टपकने का मुझे ऐसे लग रहा है। उसको खतरा हुआ कि कौन उस वक्त आके इसको बुला रहा है, लेकिन उसने इसकी परवाह ना की। उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये मेरे पुराने जानने वाले हैं और सब है, कुछ नहीं होता, मैं अभी आ रहा हूँ। और नीचे उतर कर हथियार देखे तो भी नहीं चौंका। क्यों नहीं चौंका? देखो उसने सोचा ही तो रहन रखने के लिए मेरे पास ला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से पहले ही बात तय हो चुकी थी। इसके बाद ये लोग टहलने के लिए चल पड़े। रास्ते में अबू नायला ने इसके इत्र की तारीफ की। उसने कहा तुम्हारा तो खुशबू बहुत अच्छी है। उसने कहा हाँ, मैं ऐसी औरत के साथ हूँ इस वक्त जिसकी खुशबू सबसे अच्छी है, जो मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब अपना सर सूंघने की मुझे इजाजत दो, कितनी खुशबू आ रही है। उसने किब्र और नखुव्वत के साथ इजाजत दे दी। अबू नायला ने खुद सूंघा और इसके सर के अंदर हाथ डालकर साथियों को भी सुखाया, फिर दोबारा इजाजत ली और यही किया। आपको पता है वो बहुत आम होता था, बहुत ज्यादा उसने अपना जंगी लिबास हर वक्त पहने रखता था, लोहे में समझ ले कवर होता था, इसको मारना कोई आसान नहीं था। और अब की बार अच्छी तरह सर काबू कर लिया। अब सब सूंघते सूंघने के अंदर काबू करा उसको और कहा ले लो अल्लाह के दुश्मन को। इतने में उस पर कई तलवारें पड़ी लेकिन काम ना कर सकी। ये देखकर झट मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने अपनी कुदाल इसके पेड़ यानी जेरे नाप पर लगाई और चढ़ बैठे। कुदाल आर पार हो गई। अल्लाह का ये दुश्मन इस जोर से चीखा कि गिर्दो पेश हलचल मच गई और फिर वही ढेर हो गया। चीख सुनकर किलों पर आग रोशन की गई, लेकिन मुसलमान सही सालिम वापस आ गए और फितने की वो आग बुझ गई जिसने अरसे से मुसलमानों को परेशान कर रखा था, और एक मुद्दत के लिए यहूदी सांप भी अपने बिलों में दुबक गए। इसके बाद कई दिन तक यहूदी इस कदर खौफजदा रहे कि इतना बड़ा उनका एक सरदार और एक शायर और एक बड़ा मालदार आदमी और एक हसीन आदमी की फौजी के ऊपर वो बहुत यानी एक उनके अंदर खौफ हरास फैले रहा। अब हम अगला ये जो वाकयात के अंदर एक वाकया ये भी हुआ बदर और ओहद के दरमियान जो बहुत एक सिग्निफिकेंट वाकया था। अब अगला जो वाकया है सरिया पर्दा। सरिया कौन होता है, कौन सा होता है सरिया जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद शिरकत ना हो। जमादियुल अव्वल 3 हिजरी में। अब पहले ये हुआ रबीउल अव्वल में काब बिन अशरफ का किस्सा और उसके बाद जमादियुल अव्वल में क्या हुआ। 3 हिजरी में कुरैश ने अपना एक काफिला इराक के कारवानी रास्ते से मुल्के शाम भेजा। अब इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगी और वो ये है कि यानी पिछले ही साल बदर हुई थी और बदर में कौन कमांडर था काफले का, सॉरी जो काफला गया था उसका कमांडर कौन था बदर से पहले, जो काफला बड़ा गया था जिसकी वजह से बदर का वाकया हुआ था, वो कौन सा काफला था, किसमें कौन इसका चीफ था, अबू सुफियान, ठीक है, ये सबको पता। अब एवरी ईयर काफला जाया करता था, एक शाम की तरफ जाता था बड़ा काफला और यमन की तरफ जाते थे, यमन साउथ में है, शाम नॉर्थ में। तो अब नेक्स्ट ईयर जब काफला जाने लगा तो सबको बड़ी तशवीश हुई कि अब क्या किया जाए, पिछले साल तो ऐसा हुआ था, अब क्या करें। अब की दफा जो इसका कमांडर था वो सुफवान बिन उमैया था। पता है ना सबको सुफवान बिन उमैया कौन था? उमैया बिन खल्फ का बेटा, ठीक है। अब जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि अब हम किस रास्ते को लें, इसलिए कि जो राउट जिस पे वो पहले जाते थे उस पे आप जा नहीं सकते, मुसलमान कहीं से भी आके काफले पे हमला कर सकते हैं, जैसे पिछली दफा खतरा था। अगर हम साहिल समुंदर के साथ साथ जाएं तो जितने ट्राइब्स थे साहिल के पास पास, आइदर वो मुसलमान हो चुके हैं या उनके मुसलमानों के साथ मुआहदे हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अब ये देखें, इससे ये पता चलता है कि इस दौरान में दावत का काम, तबलीग का काम चलता जा रहा था, रुका नहीं था। तो वो जो ट्राइब थे उनसे भी खतरा था कि ये तो मुसलमानों के साथ ही हैं। अब क्या हुआ था कि अब जब नेक्स्ट ईयर काफला जाने लगा तो सुफवान बिन उमैया इसका अमीर था और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक और राउट लेकर जाते हैं, एक और राउट जो मदीना से दूर जाके फिर उसके बाद शाम जाया जाए। और ये बहुत लंबा राउट था, बहुत लंबा फासला था इसके अंदर। अब अगेन सारे मक्का वालों ने अपने इसी तरह से सारा अपना, यानी बहुत बड़ा ये काफला बना, बहुत कुछ इसके अंदर साजो सामान था सब का। और इन्होंने एक गाइड भी हायर किया जिसका नाम था फुरात बिन हय्यान, एक गाइड, क्योंकि इनको रास्ता नहीं वो आता था, ये इनका जो ट्रेडिशनल राउट था उससे हट के था। इसका जिक्र इसलिए खासतौर से कर रही हूँ क्योंकि ये इसकी बाद में बात भी आएगी। और ये काफला चल पड़ा, जब ये काफला चला बहुत सीक्रेटली चला, इससे मुतल्लिक इसलिए आपको बता रही हूँ ये जो सरिया अभी हम पढ़ने वाले हैं। और इस मंसूबे की खबर इन्होंने इतनी सीक्रेट रखी, किसी को भी नहीं मालूमात होने दी। लेकिन वहाँ पे एक मुसलमान थे सुलैस बिन नुमान, जो यानी एक सीक्रेट मुसलमान थे, किसी को भी उनका नहीं पता था कि ये मुसलमान हो चुके। वो नईम बिन मसूद जो अभी मुशरिक था, बाद में ये भी मुसलमान हो गए, उनके साथ बैठे हुए शराब की मजलिस से शराब पी जा रही है। उस वक्त भी शराब हराम नहीं हुई थी, ये दोनों शराब पी रहे हैं। और नईम बिन मसूद जो काफिर है उसने इतनी शराब पी ली और उसने शराब के नशे में धुत होके बता दिया कि हमारा काफला जो है ना वो चल पड़ा है और इस तरह उसके अंदर इतना सारा सामान है और अब मुसलमानों से हम बच जाएंगे। जब सुलैस को ये पता चला तो उन्होंने फौरन ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी कि इस तरह से एक काफला गुजर रहा है और ये इन्होंने खुफिया मंसूबा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हमले की तैयारी की और 100 सवार हजरत जैद बिन हारिसा, इसीलिए ये सरिया है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए थे, और हजरत जैद बिन हारिसा की कमान में दे के रवाना कर दिया। और उन्होंने तेजी से पीछे गए और उन्होंने जाके वहाँ पे बेखबरी के आलम में उनको आ लिया। और इसमें मुसलमानों ने ये, चूंकि ये करदा नामी एक चश्मा था जहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया हुआ था, इसीलिए इसका नाम है सरिया करदा। तो जमादी अव्वल 3 हिजरी में कुरैश ने अपना एक काफला इराक के कारवानी रास्ते से मुल्के शाम भेजा, यानी ये इराक की तरफ से गया था काफला। ये रास्ता नजद से होकर शाम जाता था और मदीना के करीब से नहीं गुजरता था। इस काफले की कयादत सुफवान बिन उमैया कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हो गया और आपने हजरत जैद बिन हारिसा की कमान में 200 सवारों का एक दस्ता भेज दिया। वो काफला नजद में करदा नामी एक चश्मे पर पड़ाव डाल रहा था कि हजरत जैद ने इस पर यलगार कर दी। नतीजा ये हुआ कि पूरा काफला इनके कब्जे में आ गया, अलबत्ता इसमें जितने आदमी थे सब निकल भागे, सिर्फ काफले का रहनुमा फुरात बिन हय्यान गिरफ्तार हो सका और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। माले गनीमत की मकदार 1,00,000 दिरहम थी और ये कुरैश के लिए गजवाए बदर के बाद सबसे तकलीफ दे मार थी। अब ये इस वक्त फुरात बिन हय्यान भी देखें, सुभान अल्लाह, इससे हमें कितनी ये बात पता चलती है कि गया तो था वो गाइड करने मुशरिकों को और अल्लाह ने हिदायत का रास्ता दिखा दिया। तो कभी इंसान किसी रास्ते पर होता है और अल्लाह ताला किस तरह उसको हिदायत तक पहुंचा देता है, जो इसने सोचा भी नहीं होता, उसके गुमान में भी नहीं होता कि यहाँ से मुझे हिदायत मिल जाएगी। तो एक तो ये बात हुई, दूसरी ये कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतनी बड़ी एक फतह दी जिसमें इतना माल उनके हाथ आया, 1 लाख दीनार सोने के सिक्के होते थे, 1 लाख दीनार इनके हाथ आए। और कहा जाता है कि सोने और चांदी की जरूर से बर्तन से थे बहुत वो उनके हाथ आए। और एक तरह से काफरों का किबर, उनका तकब्बुर यहाँ पे टूटा, क्योंकि उन्होंने अब इतना सीक्रेटली एक भेजा था अपना काफला और वो भी सारा लुट गया। अभी उन्होंने शिकस्त खाई है, अभी उन्होंने पहले एक मार खाई बदर में और अब एक और इतना बड़ा सदमा कि इतना ज्यादा माल उनका एक तरह से जाया हो गया। अब इनके पास दो रास्ते थे, आइदर मुसलमानों के साथ मिल जाते, इस्लाम कबूल कर लेते और मामला सारा खत्म हो जाता, दूसरा रास्ता क्या था, जंग का। इसलिए कि इनके पास अब कोई चॉइस नहीं थी, इनके तो सारा जो इकोनॉमी थी वो थी ट्रेडिंग पे, और अगर ट्रेड राउट बंद हो जाता है तो वो फिर क्या करेंगे, उनके तो समझने के उनकी लाइफ लाइन आपने बंद कर दी, सप्लाईज बंद हो गए। तो अब एक तो ये वजह बनी गज़वा उहद, ये रीजन बना। नंबर टू रीजन ये बना कि उनके अंदर जो इंतकाम था ना वो ठंडा नहीं पड़ा था कि हमारे इतने बड़े बड़े चीफन, इतने बड़े बड़े सरदार जो है वो कत्ल कर दिए गए, हम कैसे चैन से बैठे जब तक हम इनका बदला ना लें। तो बदला लेने की भी एक उनकी थी कि जो है हमने बदला लेना। नंबर थ्री बात ये कि वो ये देख रहे थे कि इस्लाम तरक्की कर रहा है, इस्लाम और आगे से आगे फैल रहा है, और जो इस्लाम दुश्मनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बोझ था ना वो उनको चैन से नहीं बैठने दे रहे। तो ये दो तीन रीजन मैंने आपको बताए जिसकी वजह से उन्होंने गज़वा उहद की, ये उहद की जंग की तैयारी शुरू कर दी। पिछली जब बदर हुई थी तो वो ऐसा जंग के लिए नहीं जा रहे थे, अब वो पता है जब वो निकले थे तो किस लिए निकले थे, काफले को बचाने के लिए। लेकिन ये जंग जो है गज़वा उहद, ये फुल फ्लैज सिर्फ इसलिए थी कि जंग की जाए, लड़ाई के मकसद से थी। अब इसके अंदर जो कुछ चीजें अहम है वो पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि क्या चीजें अहम है, कि इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया इस जंगे उहद के लिए। एक तो सबसे पहले बदर से जब ये शिकस्त हुई थी तो उसके बाद ही अबू सुफियान ने कह दिया था कि हम अब दोबारा जंग लड़ेंगे और इंतकाम लेंगे, तो पहले से इनके जहन में था ये। लेकिन पहला काम इन्होंने ये क्या किया, इसने इसमें से हम अभी पढ़ते हैं बुक से अभी इंशाल्लाह। पहला काम इन्होंने क्या किया कि अबू सुफियान इकरमा बिन अबू जहल और सफवान बिन उमैया को लेकर डोर टू डोर गया और लोगों से कहा कि जिन्होंने अपने पैसे अपना माल काफले में डाला हुआ था, जिस काफले को मैं बचा के लाया हूँ, तो वो अपना प्रॉफिट हमें दे कि हम दूसरी जंग लड़ें। तो किन को, दो को साथ लिया, इकरमा को और सफवान को, क्यों, जो दोनों के बाप जो है ना कत्ल हुए थे बदर में, इसलिए लोग इनकी बात को ज्यादा वो करेंगे, अहमियत देंगे। तो इन दोनों को साथ लेके गया। तो नंबर वन फाइनेंसिस की जो है ना उसको जमा करने का इसने ये तरीका इख्तियार किया, यानी एक कैंपेन चलाई समझिए कि फाइनेंसिस के लिए, डोनेशन के लिए एक कैंपेन, क्योंकि जाहिर है जंगे तो ऐसे तो नहीं लड़ी जाती। नंबर टू इसने क्या किया कि वॉलंटियर, अब पहले माल का हो गया, अब वॉलंटियर जमा करने का, कि वहां पे केनाना और तहामा दो कबाइल थे, बड़े बड़े कबाइल थे, उनका भी ये ट्रेडिंग राउट था और अगर ये ट्रेडिंग राउट बंद हो जाता है तो उनको भी नुकसान पहुंचेगा। वैसे ये आपस में कभी जुड़ के नहीं बैठते थे, आपस में बहुत दुश्मनी रखते थे, लेकिन इस्लाम से दुश्मनी में सारे इकट्ठे हो गए। और ये आज जो आप देखते हैं ना, ये आज का नहीं है तरीका, ये देखिए उस जमाने में भी ऐसे था, क्योंकि इस्लाम एक हक है और बाकी बातिल है। जब बातिल कुव्वतें इस हक का मुकाबला करने लगती है ना, सब एक हो जाती है। तो देखिये अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आपस में इनकी कई जंगें होती थी, कई इनके आपस के अंदर बहुत इख्तलाफात रहते थे, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में इन्होंने कहा कि नहीं, सब आप भी अपने वॉलंटियर भेजें और हमें माल भी अपना साथ उसके जरिए भी हमें एड करें और हम जाके मुसलमानों से लड़ेंगे। अच्छा, अब तीसरा इसके अंदर क्या हुआ, तीसरी चीज इसने क्या की, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी ना, फाइनेंसिस की भी और दूसरी वैसे भी वॉलंटियर्स के लिए ओपन कर दिया इन्होंने। थर्ड थिंग क्या कि मीडिया, जो मीडिया था उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की,
और उसके लिए क्या था, एक शायर था अबू उज़्ज़ा, ये बदर में पकड़ा गया था, कैदी बना था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बगैर फिदिये के छोड़ दिया था कि आइंदा तुम हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे। अबू सुफियान और सफवान बिन उमैया ने भी इसको कहा कि तुम मुसलमानों के खिलाफ और जंग पे जाने के लिए काफिरों को ऐसी शायरी करो, इनको भड़काओ और इनको और इनके जज्बात में इश्तियाल पैदा करो ताकि ये मुसलमानों से लड़ने के लिए आमादा हो जाए। और दूसरा ये भी कहा कि जो तुमने महद वहद किया हुआ उसको छोड़ो, तुम हमारे साथ जंग पे चलो, अगर तुम फातिह बन के वापिस आए तो माला माल कर देंगे हम तुम्हें, और अगर तुम ना आ सके तुम्हारी बेटियों की किफालत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। तो अबू उज़्ज़ा जो था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पे और कुफार को उभारने पे बहुत शायरी की। एक और शायर भी था, उसने भी बहुत शायरी की उनके जज्बात भड़काने के लिए। आपको पता है कि जब ये जंगे वगैरह होती हैं तो इसमें ये आपने देखा ना जंगी तराने वगैरह कैसे होते हैं, वो कैसे जज्बात को इश्तियाल देते हैं कि इतना इश्तियाल इंसान में पैदा कर देते हैं। वाकई इसके अंदर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई अल्फाज कई बातें भी जादू का असर करती हैं, कई बोलने वाले भी ऐसे होते हैं कि इंसान के ऊपर ऐसा इफेक्ट होता है जैसे जादू का। तो ये इनकी शायरी ऐसी होती थी उस जमाने में, और आज भी जो जंगी तराने लिखते हैं वो ऐसी करते हैं कि इंसान का दिल चाहता है उठ के अभी लड़ना शुरू कर ना, अभी मरने मारने पे उतर, उसका दिमाग बिल्कुल जैसे ना वो अपनी ग्रिप में ले लेते हैं। तो इन्होंने मीडिया को यूज किया इस चीज के लिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे गज़वाए ओहद शव्वाल 3 हिजरी कब हुआ, शव्वाल 3 हिजरी में, 2 हिजरी रमजान में क्या हुआ था, बदर में। और शव्वाल क्या है, जस्ट आफ्टर रमजान, यानी समझ लें कि एनिवर्सरी बदर की, 1 साल गुजरा है बदर को, ठीक है। कुरैश अभी गज़वाए बदर के इंतकाम की तैयारी कर ही रहे थे कि मुकामे करदा में इन पर एक और मार पड़ गई, उससे उनका गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने तैयारी की रफ्तार तेज कर दी। रजाकाराना भर्ती, ये जो मैंने आपको वॉलंटियर का वो करने का ये बताया वो ये, रजाकाराना भर्ती का दरवाजा खोल दिया, अहाबीश को भर्ती किया गया, जो हबशी लोग बद्दू लोग थे उनको भर्ती किया, या मैंने आपको बताया कि 2 कबाइल जो थे किनाना और तहामा के, और तरगीब और तहरीज के लिए कुछ शायर खास किए। ये मैंने आपको 3 चीजें बताई है ना, ये तीनों के पॉइंट्स हैं, अब आप इनको पॉइंट वाइज अपने पास नोट्स में लिखें। यहाँ तक के 3000 फौजियों का एक लश्कर तैयार हो गया। अब वहां पे पेड आर्मी तो थी नहीं किसी के पास भी, किसी की फौज है मक्का वालों की ये फौज है, बस लोगों को ही कहते थे ना आप आए और लड़े, तो वो कोई किसान है कोई कुछ है कोई कुछ करता है कोई कोई काम करता है, वो सारे लड़ने के लिए आ जाते थे। तो 3000 लोगों का लश्कर तैयार करना बहुत बड़ी बात थी, जिसके पास 300 ऊंट 200 घोड़े और 700 जीरे थी। इस लश्कर के साथ कई औरतें भी थी जिनका काम जंग के लिए भड़काना और जोश व बहादुरी की रूह फूंकना था। अब अगला इन्होंने स्टेप क्या उठाया कि इस दफा हम अपने साथ औरतों को भी लेकर जाएंगे। रीजन एक तो ये कि औरतें जंगी तराने गाएंगी और हमारे जोश और जज्बे उभारेंगी, जैसे आप जो पाकिस्तान की तारीख में जानते हैं कि पहले की जंगों के अंदर वो जंगी तराने भी, मैंने सुना है कि वो जंगी तराने बजाए जाते थे रेडियो पे इस पे ताकि लोगों का मोरल हाई रहे और वो की बात नहीं करें या बिल्कुल डाउन नहीं हो जाए। तो इन औरतों को इस काम के लिए, अब वो रेडियो वगैरह तो नहीं थे, लाइव औरतें ही गाती हैं। और दूसरा क्या था कि कई बड़े बड़े सरदार भी अपनी औरतों को लेकर जा रहे थे ताकि कोई पीछे ना हट सके, जिसके साथ औरतें होंगी उसको ये ख्याल होगा कि हमारे साथ औरतें, अगर हम हार गए आप पीछे हटे तो हमारी औरतें पकड़ी जाएंगी। तो जिनका काम जंग के लिए भड़काना और जोश व बहादुरी की रूह फूंकना था, इसका सिपा सालार अबू सुफियान था और अलम बरदारी बनी अब्दुद्दार के बहादुर। ये लश्कर गैज़ो गज़ब से भरपूर मदीना के अतराफ में पहुंचा। आपको एक और बात बता दूं, अबू सुफियान भी अपनी बीवी को लेकर गया था हिंद को। हिंद का भी रोल बहुत है इस जंग में, इसलिए आप देखेंगे आगे इसे मेंशन करना जरूरी है। اور جب لعینین اور احد کے قریب وادی قیناح کے دامن میں ایک کھلے میدان کے اندر ڈیرہ ڈال دیا. یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ. اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی. اب یہ خبر کیسے ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ وہ لشکر آ رہا ہے؟ ہوا یہ کہ جب لشکر نے لیو کر دیا مکہ کو تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن سیکرٹلی, ان کا بھی ابھی پتا نہیں تھا لوگوں کو یہ مسلمان ہو چکے ہیں, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لشکر روانہ ہو گیا تو انہوں نے اپنا ایک غلام بھیجا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچائی جائے. یہاں پہ میرا خیال اس کے بارے میں نہیں ہے. اچھا, تو وہ اس وقت جو مکہ سے مدینہ کا فاصلہ عام طور پہ 2 ہفتے میں طے کیا جاتا تھا, اور کوئی زیادہ تیز جاتا تھا تو 10 دن میں پہنچ جاتا تھا, لیکن یہ غلام اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ 3 دن میں جا کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں بیٹھے لے تھے اور حضرت عباس نے خط بھیجا تھا کہ اس طرح سے لشکر روانہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے فرمایا کہ آپ یہ خط پڑھ کے بتائیں. انہوں نے خط پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو راز رکھنا, کسی کو اس کا پتہ نہ چلے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فوجی تلایا گردی کا انتظام فرما لیا, یعنی ایمرجنسی نافذ کر دی. مدینہ ایمرجنسی ایسی نافذ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی پہ بھی کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے, اور جتنے راستے مدینہ کی طرف آنے والے تھے ان راستوں کے اوپر بھی یعنی پیٹرولنگ شروع ہو گئی, ان راستوں پہ بھی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی اور لوگ رات دن ہتھیار پہن کے رہنے لگے کہ کسی وقت بھی اچانک کہیں سے حملہ اگر ہو گیا تو کیا ہوگا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ تھے. ابھی یہ نہیں, عام لوگوں کو ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, یہ بھی آپ بات نوٹ کریے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد, میرے خیال یہاں پہ ہے یا نہیں پتہ نہیں اس میں بک میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ اطلاع لے کر آئیں, از دس نیوز اوتھینٹک, یہ جو بات پتا چلی ہے اوتھینٹک ہے, واقعی ایسا ہو گیا کہ مکہ سے اس طرح لشکر آیا. اور وہ لوگ جب گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا تو واقعی مدینہ کے باہر تک تقریباً لشکر پہنچ چکا تھا, کیونکہ وہ لشکر بھی اتنی تیز آیا, ان کے اندر تو اتنا زیادہ جوش اور انتقام کا جذبہ اور غصہ تھا, وہ 7 دن میں ہی پہنچ گیا. اب وہ مدینہ سے باہر ہی کہیں بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا, وہ تو باہر ہی بیٹھے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں سبحان اللہ پرسنالٹی کیسی ہے. اب ہمارے جیسے لوگوں کو صرف اتنی اطلاع مل جائے نا کہ مہمان باہر کھڑے ہیں اور آپ کی تیاری نہیں ہے تو ہاتھ پیر پھول جائیں گے. اور ادھر کیا ہے, دشمن کا لشکر کھڑا ہوا ہے, مدینہ سے باہر ہی پہنچ گیا, یعنی ان کے پاس 1 یا 2 دن کا صرف ٹائم تھا. اور اندازہ کریں کہ کتنی بڑی بات ہے, اور وہ بھی اتنا بڑا لشکر 3000 کا, کیونکہ چھوٹی بات نہیں تھی. اب ایسے میں کوئی عام بندہ تو پینک کرتا ہے, جلد بازی کرے, ہاتھ پیر پھول جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی ایسے کیا کہ لوگوں کو جلدی جلدی اعلان کر دو بس دوڑو بھاگو, ایسا کچھ نہیں. اچھا, پھر کیا ہوا, یہ دیکھیں سیکیورٹی کا انتظام کیا. پھر جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا, یعنی ابھی وہ باہر بیٹھے ہیں, یعنی پہنچ گیا کا مطلب ہے ابھی مدینہ سے باہر ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا. آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جائیں, مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے. اب کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا, قریبی قریبی جو اپنا حلقہ تھا ان کو جمع کیا اور ان سے ایک مشورہ کیا. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے مشورے کی اہمیت. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور آپ سے بہترین مشورہ اور آپ سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے, اور آپ سے زیادہ سمجھداری اور عقل مندی کی بات بھی کس کی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود ہم سورہ شورا میں بھی دیکھتے ہیں, قرآن کریم میں اور سیرت میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم معاملات میں مشورہ ضرور کیا. جس کے اوپر خود وحی آتی ہو وہ بھی مشورہ کرتا ہے. 2 چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی, استخارہ اور مشورہ. استخارہ اللہ سے خیر مانگنا, اور مشورہ अपने इंसानों में जो आपके करीबी रफका हैं, जो समझदार हैं, जो अहले इल्म हैं, उनसे मशवरा। मशवरा भी हर एक से नहीं कि पब्लिक के अंदर सारों से पूछना शुरू हो जाए तो तुम बताओ सारे एक वो ऐसे नहीं। मशवरा भी समझदार लोगों से, अहले इल्म लोगों से, उन लोगों से जो आपको आप समझते हैं कि ये हमें सही मशवरा दे सकते हैं। हर एक से ही मशवरा मांगा जाना चाहिए। अब क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय क्या थी कि मदीना के अंदर रह के लड़ा जाए। याद रखें, मदीना की पूरी हिस्ट्री में कभी भी, जब ये लोग वैसे भी कभी अगर जंग होती, जब इस्लाम नहीं भी आया था, कभी पूरी हिस्ट्री में जब इन लोगों ने मदीना के अंदर रह के लड़े तो कभी कोई इन पे गालिब नहीं आ सका था। मदीना को कोई डोमिनेट, कोई गलबा नहीं पा सका बाहर की कुव्वत आज तक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि नहीं, हम ये जब वंस अंदर आ जाएंगे तो गलियों में आएंगे, रस्में, फिर हम इनको जल्दी हैंडल कर सकते हैं, और ऊपर से औरतें पत्थर बरसाएंगी तो सारा यानी उनको हम देर कर लेंगे। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने भी इस राय से मुआवजा की। अब्दुल्ला बिन उबई, आपको पता है मुनाफिकीन का सरदार, उसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से उसने एग्री किया। क्यों? ये नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय का इहतराम करता था, बल्कि वो भी जानता था, वो भी लड़ाई का गुर जानता था, तो उसकी भी ये राय थी कि हम अंदर ही रह के लड़े तो इसके अंदर हमारी फतह है। गोया वो चाहता था कि घर ही बैठा रहे और जंग से पीछे रहने की तोहमत भी ना लगे। दूसरा उसका क्या था कि बाहर जाना ही ना पड़े, जंग करनी ही ना पड़े, हम घरों में ही रहे। लेकिन जवानों ने जोश दिखाया और खुली जगह दो दो हाथ करने पर इसरार किया। अब इस मजलिस के अंदर जो जोशीले नौजवान थे, आपको पता है यूथ में ना बहुत उनका खून गर्म होता है, और उनको ये था कि नहीं, हम क्यों अंदर रह के लड़े, हम बाहर जाएंगे और इनके साथ दो दो हाथ होंगे। और ये राय खास तौर पे उन सहाबा कराम की थी जो बदर में हिस्सा नहीं ले सके थे। वो कहते थे कि बस हम अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएं, हम अल्लाह को दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे। आपने इनकी राय मान ली और लश्कर को तीन दस्तों में तकसीम किया। अब इनकी राय मानने से पहले की भी आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि इनकी राय मानने में भी ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लोग बहुत बोल रहे थे, बहुत इसरार कर रहे थे, और इनमें हजरत हमजा भी थे कि नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बाहर निकल के लड़ें और हम इनको अपनी ताकत दिखाएं और इस तरह करें। तो उस वक्त जब इन नौजवानों ने इतना इसरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के गए और अपनी तैयारी के लिए, जंगी तैयारी के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखिएगा, दो जीरे पहनी थी उहद में। इससे क्या पता चलता है, नबी है, कहें कि नहीं मुझे कोई परवाह नहीं, अल्लाह ही मेरी हिफाजत करेगा। हम कहते हैं बस अल्लाह हिफाजत करेगा, बस मुझे तो यानी कोई एहतियात करने की जरूरत नहीं, कोई सबब इख्तियार करने की। ये पता चलता है अल्लाह के ऊपर भरोसा एक चीज है और सबब इख्तियार करना दूसरी चीज है। सबब जरूर इख्तियार करो, एहतियात जरूर करो, लेकिन भरोसा फिर जिरा पे ही होना चाहिए कि जिरा मुझे बचाएगी, बचाना अल्लाह ने, मगर एहतियात लाजिम है, सबब इख्तियार करना लाजिम है। आप कहेंगे मैंने आज क्लास में जाना है लेकिन मैं सोई पड़ी रहूं, अल्लाह चाहेगा तो मुझे ले जाएगा बस। हाँ, तो जॉब के लिए ये नहीं सोचते, शॉपिंग के लिए ये नहीं सोचते, कहीं और मजे की पार्टी पे जाना है, दावत पे जाना है, उसके लिए नहीं सोचते। उसके लिए फौरन उठेंगे और तैयार होंगे और कहेंगे नहीं कुछ करती हूँ, किसको फोन करूँ, राइट जाइए। लेकिन जब अल्लाह के दीन की बात आती तो हम कहते बस अल्लाह चाहेगा तो ले जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो हम कुरान क्लास ले लेंगे। यानी जैसे कि अल्लाह ने ही कहा, वो उसका कसूर है, मेरा नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। और शैतान ने ऐसे कहा था, अल्लाह तेरा कसूर है, मेरा का कसूर, मैंने नाफरमानी की तो तूने मुझे कहा था ऐसा कर, कहता ही ना तो फिर मैं क्यों नाफरमानी कर। अल्लाह का नहीं होता ये, इंसान खुद अपने ऊपर ब्लेम ले कि मैं खुद कोशिश नहीं करती, मेरी कोशिश में कमी है, मेरी तरफ से एफर्ट में कमी है। जिस दिन आपने यकीन करें इरादा बांध लिया और आपने कदम उठा लिया, अल्लाह ताला आसानी कर देता है और अल्लाह थाम लेता है उस इंसान को। लेकिन जब इंसान बैठा बैठा कहे बस अल्लाह चाहेगा तो मैं कुरान भी सीख लूंगी, अल्लाह चाहेगा मैं हिज्र कर लूंगी, अल्लाह चाहेगा तो मैं ये कर लूंगी, बस आप दुआ करें अल्लाह करा दे, ऐसे नहीं हो। तो दुआ अपनी जगह, अल्लाह ताला से मदद मांगना अपनी जगह, अल्लाह पे भरोसा करना अपनी जगह, लेकिन साथ साथ आप अमली कदम उठाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो जीरे पहनना इतनी बड़ी चीज की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा भरोसा किसको हो सकता था अल्लाह ताला पे। लेकिन फिर आप ने असबाब इख्तियार किए। तो आप ने दो जीरे पहनी, जब दो जीरे पहन ली और जंगी सामान अपना अपने ऊपर लगा लिया, उस वक्त वो नौजवान जो बैठे हुए थे उनको जो बड़े बड़े अकाबर सहाबा थे, बुजुर्ग सहाबा थे, उन्होंने कहा तुम लोगों ने सही नहीं किया, तुम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया कि वो जाके बाहर निकल के लड़े, जबकि तुम देख रहे थे कि उनकी राय थी कि अंदर रह के लड़ना चाहिए, तुम्हें करना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने उस वक्त क्यों कहा, उस वक्त कहते ना कि क्या कर रहे हो बदतमीजी, चुप करो, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का एहतराम था, इतना मजलिस का एहतराम था कि उस वक्त खामोश रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के गए तब उनको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या तुमने किया, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कहा वाकई ये तो हमसे गलती हो गई, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए था, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते तो हमें उनकी राय का एहतराम करके, वो तो अपने जोश में कह रहे थे ऐसा नहीं, और वाकई उनमें से अक्सर सहाबा शहीद हो गए। इसे पता चलता है वो जो उनका जोश जो वो बात कह रहे थे ना वाकई उसमें सच्चे थे, वाकई वो लड़ना चाहते थे, वाकई वो चाहते थे अल्लाह को हम दिखा दें कि हम अपने खून भी बहा देंगे अल्लाह की खातिर। तो उस वक्त उन्होंने एक सहाबी को भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दें कि हम आपके मशवरे को कबूल करते हैं और अब हम बाहर नहीं लड़ते, जाके हम मदीना के अंदर रह के लड़ने को तैयार है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, नबी को जेब नहीं देता कि वो जब जीरा पहन ले तो उसके बाद लड़ाई किए बगैर उसको उतार दे, ये नबी को जेब नहीं देता। यानी अब जो फैसला हो चुका हो, इससे क्या पता चलता, जब आप कदम उठा ले ना, फैसला कर ले, अब ये डावा डोल होना, अरे पता नहीं अब करूं कि नहीं करूं, अब आगे जाऊं कि नहीं जाऊं, नहीं, फिर बस अल्लाह के भरोसे पे वो करते हैं। फिर दूसरी बात, एक और बहुत अहम बात है, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था इससे पहले, और ख्वाब में ये देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है, और वो तलवार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारी है तो वो टूट गई है, और उसके बाद दोबारा मारी तो ठीक हो गई। अब इसका भी एक मतलब था, और कुछ गायें भी देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसका मतलब क्या था, और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ये ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में देखा था, लेकिन इसकी समझ नहीं आई थी, ओहद के बाद इस ख्वाब की समझ आई थी क्या है। ख्वाब के अंदर जो देखा कि पहली दफा मारा है तो तलवार आगे से जैसे टूट गई, उसको नुकसान हुआ, तो इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जंग में नुकसान होगा। और दूसरी दफा जब मारा तो उस वक्त देखा कि तलवार बिल्कुल ठीक होगी, यानी इसके बाद नुकसान नहीं होगा, उसके बाद फतह अल्लाह ताला आपको देगा। और कुछ गायें देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो गाय से भी पता चलता था कि कुछ ये जो शहीद मुसलमान है उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनकी शहादत, तो ये गाय एक ऐसा जानवर है कि अगर ये जिंदा है तब भी फायदा, अगर ज़िबा कर दिया जाए तब भी फायदा, तो ये सहाबा होंगे इनके जिंदा रहने में भी फायदा, और इनकी शहादत भी इनके दर्जे बुलंद कर देगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गायें देखी, अपनी तलवार देखी। अच्छा, बाज जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम भी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम जुल्फ़िकार था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था। और ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब था, नबियों के ख्वाब याद रखें कि वो हमेशा सच्चे होते हैं, वो ख्वाब कभी नबियों के झूठे नहीं होते। और वाकई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ज़िबा होती हुई गायें देखी थी, तो वाकई उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। और लेकिन अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, अल्लाह ताला चाहता तो पहले ही बता देता, नहीं आपको इस तरह से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर छोड़े हैं फैसले कि वो कदम उठाएं, और अल्लाह मोमिनों के साथ है, उनकी शहादत में भी उनके दर्जों की बुलंदी थी, उसमें भी बेहतरी थी, उसमें भी कोई नुकसान नहीं, बेहतरी थी उनके लिए। और इसका फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मुसलमानों को, इसकी ताबीर बताई थी बाद में। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जाता है कि जब कुफार का लश्कर निकला तो रास्ते में एक मकाम आया जहां पे उन्होंने पड़ाव किया था, अब्बा का जो मकाम है, तो अबू सुफियान की जो बीवी थी हिंद, उसने वहां पे ये एडवाइस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र को उखेड़ दिया जाए। तो उस वक्त वो भी बड़े अकलमंद लोग थे वैसे, उन्होंने कहा कि अगर हमने ये काम किया ना तो बहुत بیک فائر ہوگا. ہمارے لیے بہت بڑا یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ خوف تھا کہ اس کے بڑے ریزلٹ صحیح نہیں ہوں گے, تو اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں. تو بعض دفعہ دیکھیں ایسے اتنے سنگین اقدامات اٹھانے سے پہلے یہ سوچ ضرور لینا چاہیے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ نہیں کہ جوش انتقام میں, نفرت میں, دشمنی میں انسان اس حد تک پھر آگے بڑھ جائے کہ پھر اس کی کانسیکوینسز برداشت نہ کر سکے. تو وہ چونکہ وائز تھے لوگ, کرنا چاہتے تو کر لیتے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر ہم آگے دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو تین دستوں میں تقسیم کیا. ایک دستہ مہاجرین کا جسے جس کے علم بردار مصعب بن عمیر تھے, دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار حضرت اسید بن مزیر تھے, اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت حباب بن منذر تھے. اب علم بردار کون ہے؟ جن کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا. تو تین میں تقسیم کیا. آپ نے دیکھا تھا بدر میں بھی اسی طرح ہوا تھا. پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا. جو چھوٹے تھے انہیں واپس کر دیا, البتہ رافع بن خدیج کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے. اب جو سبحان اللہ یوتھ میں جو جذبہ تھا, بچوں کا جذبہ, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بچے بھی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے بھی حصہ لینا, اور وہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ جا کے جو جب ساروں کا ایک سروے کیا پورے لشکر کا کہ کون کون ہے اس کے اندر, تو جو چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے, تین ایجر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو واپس کر دیا تھا. البتہ رافع بن خدیج جو تھے وہ چھوٹے بھی تھے لیکن چونکہ اتنے ماہر تیر انداز تھے اس لیے ان کو رکھ دیا. تو لیکن سمرہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں, آپ نے اس کو رکھ دیا, میں تو اس کو پچھاڑ سکتا ہوں, میں اس کو ہرا سکتا ہوں. تو آپ نے دونوں کی کشتی کروائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا, لہٰذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی. مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی, وہی رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے. پھر آخری رات میں فجر سے پہلے کوچ کر دیا اور شوت نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی. اب دیکھیں جو کافر ہیں نا وہ احد کے قریب پہنچ چکے ہیں, ان کے بھی جو ابو سفیان تو مین کمانڈر تھا اور اس نے پھر حضرت خالد بن ولید اور دوسری طرف اکرمہ, ان دونوں کو کمانڈر بنایا دو دستوں کا. اکرمہ وہ بھی مسلمان ہو گئے اور خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے. ایک دن وہی کافروں کے دستوں کے کمانڈر تھے اور ایک دن مسلمانوں کے لیے فتح کا نشان بن گئے. اتنی فتوحات ان کے ہاتھوں میں. تو ہمیں ابھی سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ کہ وہی جو آج کفر کے اندر اتنی آگے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام میں اتنا اس سے زیادہ آگے پہنچا دے. تو کبھی مایوس نہ ہوں کسی سے, اور کبھی یہ نہیں سوچیں کہ یہ تو فلاں تو مان ہی نہیں سکتا, فلاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, فلاں تو جہنمی ہے. آپ کو نہیں پتا کس کے اندر کیا خیر اور وہ کب رنگ دکھاتی ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کہ کیا ہوا اس. یہیں تک ابھی آپ نشان لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.